मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 26 फरवरी 2016 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 13 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं उमेश कुमार वर्मा, आप झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। शुभांकर मंडल, आप हुबली वेस्ट बंगाल से हैं। सुदेश गिल, आप कैथल हरियाणा से हैं। अभिजीत यादव, आप चंदौली से हैं। पप्पू पवार, आप बैतूल मध्य प्रदेश से हैं। प्रवेश, आप आशा खेरा हरियाणा से हैं। प्रेम भास्कर, आप पटना बिहार से हैं। ओम शरण यादव, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। श्याम शर्मा, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। शांति कन्वर, जोधपुर राजस्थान से हैं। रवि भूषण कुमार, पटना बिहार से हैं। और संजीव कुमार, कटिहार बिहार से हैं। और अविनाश शर्मा, आप अलवर से हैं। तो उमेश, शुभांकर, सुदेश, अभिजीत, पप्पू, प्रवेश, प्रेम, ओम शरण, श्याम, शांति, रविभूषण, संजीव और अविनाश, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, कुछ जरूरी सूचनाएं मुझे आपको देनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल शुक्रवार है और अगले दिन शनिवार और उसके अगले दिन रविवार है, यानी कि शनिवार और रविवार को जो डेली ऑडियो गाइडेंस आप रोज सुनते हैं वह आपको अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स होंगी, जो योजना और कुरुक्षेत्र हिंदी और इंग्लिश के जो एक एक आर्टिकल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो ये एज इट इज आपको नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल होते रहेंगे। हाँ, स्पेशल ऑडियो भी आपको उसी तरीके से मिलेगा जैसा कि अभी तक मिलता रहा है। दोस्तों, इसी के साथ ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, और वो ये कि आप सबको मालूम है कि 28 फरवरी से, यानी कि संडे से, एकेडमी की 15 दिन की क्लासेज शुरू हो रही हैं। मित्रों, ये 15 दिन की क्लासेज हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, एकेडमी के लिए भी, जो स्टूडेंट इस पर भरोसा करके अपनी आंखों में सपना लेकर के या भोपाल आ रहे हैं उनके लिए भी, और डेफिनेटली मेरे अपने लिए भी। तो इसलिए मित्रों, ये जो 15 दिन का वक्त होता है, इसका एक एक पल पूरी तरह से इन क्लासेस को समर्पित होता है, क्लासेस में आने वाले स्टूडेंट्स को समर्पित होता है। लगातार क्लासेस चलती हैं और जो बीच में थोड़ा जो समय बचता है उसमें स्टूडेंट्स मेरे पास आने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे आते हैं, बातें करते हैं, अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। तो पूरी तरह से मैं 15 दिन तक इसी के लिए समर्पित रहता हूं। दोस्तों, मेरे लिए ये ज्ञान का कुंभ मेला है जिसमें चाहता हूं मैं कि लगातार उसमें डुबकी लगाए रहूं। इसलिए मित्रों, मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि मंडे ऑनवर्ड्स 15 दिनों तक आपको इस ऑडियो गाइडेंस अवेलेबल नहीं करा सकूंगा। नेक्स्ट जो आपको ऑडियो अवेलेबल होगा वह होगा 14 मार्च से। 13 मार्च तक क्लासेस होंगी और 14 मार्च से यह ऑडियो उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर आपको अवेलेबल होने लगेगा जिस तरीके से अब तक होता रहा है। लेकिन इसी के साथ ही मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जहां तक प्रेस क्लिपिंग्स का सवाल है, योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स का सवाल है, आपको वीकली जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसका सवाल है, वे आपको लगातार मिलते रहेंगे, उनमें कहीं किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। दोस्तों, सच पूछे तो मुझे यह सूचना देते हुए काफी दुख हो रहा है कि इस बीच कई दिनों तक, लगभग 2 सप्ताह से भी कुछ दिन ज्यादा तक, मैं आप लोगों से ऑडियो के माध्यम से रूबरू नहीं हो सकूंगा। मित्रों, ये लगभग लगभग रोज ऑडियो की तैयारी करना, उसे रिकॉर्ड करना और इसके बाद आप सबकी प्रतिक्रिया का इंतजार करना, ये सच पूछे तो मेरी दैनिक जीवन का एक बड़ा अनिवार्य सा हिस्सा हो गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस काम ने मेरे जीवन को एक डिसिप्लिन में ढाल दिया है, एक अनुशासन प्रोवाइड किया है। ये पूरा श्रेय आप सभी प्रिय श्रोताओं को जाता है, क्योंकि मित्रों यह आपके लिए है। जिस दिन आप इसे अस्वीकार कर देंगे यह बंद हो जाएगा, क्योंकि आप सबका इससे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, इसे बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है और आप सब इसकी उपयोगिता को सिद्ध करके भी दिखा रहे हैं, केवल शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि परिणाम के माध्यम से। तो निश्चित रूप से इससे जो आत्मसंतोष मिलता है और उस आत्मसंतोष से जो ऊर्जा मिलती है, यह उसी की ताकत है कि मैं न केवल इस ऑडियो गाइडेंस को आप लोगों को प्रोवाइड ही करता हूं बल्कि इसे जीता भी हूं। और इन 15-17 दिनों के लिए जब मेरे जीने की यह पद्धति टूटेगी तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना दुख मुझे महसूस हो रहा होगा और मैं एक तरह के खालीपन का भी एहसास करूंगा। तो मैं अपने प्रिय श्रोताओं से पूरी तरह से इस कमी के लिए माफी मांगते हुए उनसे कुछ दिनों की इजाजत चाहूंगा। लेकिन मित्रों, एक खुशी की बात यह भी है कि मेरे सामने आफी के बीच के स्टूडेंट्स होंगे, जीवंत रूप में मौजूद होंगे, प्रत्यक्ष रूप में मौजूद होंगे। अभी तो मैं आप लोगों से एक मीडियम के माध्यम से बात कर रहा हूं कि आप मेरी आवाज सुनते हैं और आपके ईमेल अक्षर के रूप में मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं, लेकिन यह जरूर है कि जब मैं आप लोगों के ईमेल पढ़ता हूं तो जैसे ही आप लोगों का नाम मैं पढ़ता हूं मेरे आंखों में उस स्टूडेंट्स की तस्वीर तो आती ही आती है, भले ही वह तस्वीर यथार्थ में वैसी बिल्कुल भी न हो बल्कि कह लीजिए कि उसके बिल्कुल उल्टी हो, लेकिन उसका भी अपना एक आनंद होता है। कल्पना का तो मित्रों एक अद्भुत आनंद होता ही है जिसे मैं इमोशनल एनर्जी मान करके चलता हूं, और वह आनंद अब मैं ऑडियो के माध्यम से तो मिस करूंगा लेकिन मेरे सामने अब प्रत्यक्ष आप सब में से ही कुछ स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, वहां भी एक एक पल को एंजॉय किया जाएगा, बातें करेंगे और जो उस समय स्टूडेंट्स में मुझे ऊर्जा दिखाई देती है, जो उत्साह दिखाई देता है और उन सब से भी अद्भुत बात मित्रों यह कि जो कमिटमेंट दिखाई देता है और उस कमिटमेंट के कारण जो वहां डिसिप्लिन एस्टैब्लिश होता है वह निश्चित रूप से वंदनीय होता है। ये आप सब करते हैं और फिर मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप जो ये सब कर रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस ऑडियो गाइडेंस का तो हाथ है, इसलिए फिर से मैं और भी जोश खरोश के साथ काम करने लगता हूं और मेरे साथ फिर मेरी पूरी टीम पीछे तनकर खड़ी रहती है। तो इसलिए मित्रों निश्चित रूप से एक तरफ तो आप सबसे बिछुड़ने का दुख है लेकिन दूसरी तरफ निश्चित रूप से बहुत से लोगों को प्रत्यक्ष रूप से पाने का उत्साह भी है और आनंद की अनुभूति भी है। तो इसी आनंद और उत्साह की अनुभूति के साथ मैं सभी आने वाले विद्यार्थियों का आज ऑडियो के माध्यम से अंतिम बार स्वागत कर रहा हूं और स्वागत करने की अपनी उत्सुकता को व्यक्त कर रहा हूं। मित्रों इसी के साथ ही जो भी स्टूडेंट यहां आ रहे हैं उनके जो अभिभावक हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनसे मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा और वो निवेदन ये है कि आप अपने बच्चों को यहां भेज रहे हैं इस विश्वास के लिए एकेडमी आप लोगों के प्रति पूरी तरह से तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। आपका एक उद्देश्य है कि आपके अपने सपने जो अधूरे रह गए हैं या अब जो फैल कर बड़े हो गए हैं बच्चों के माध्यम से पूरे हों। एकेडमी का यह उद्देश्य है कि वह आपके और आपके बच्चों के सपनों को रंग भरने पूरा करने में, उनमें रंग भरने में थोड़ी मदद करे। ये सब हमको मिलकर करना होगा। पहला ग्रुप जो है वो पेरेंट्स का है, दूसरा ग्रुप स्टूडेंट्स का है और नो डाउट तीसरा ग्रुप एकेडमी का है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अपना दायित्व निभाएंगे, एकेडमी हर संभव अपना दायित्व निभाएगी। पेरेंट्स से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वे स्टूडेंट्स को अभी जितनी अधिक से अधिक हो सके भावनात्मक मदद उपलब्ध कराएं। भावनात्मक मदद उपलब्ध कराने का केवल मेरा दो अर्थ है अभिभावकों। पहला तो यह कि जब भी स्टूडेंट्स यहां 15 दिन रहेंगे, आप कोशिश करें कि कम से कम फोन पर वो डिस्टर्ब हों। एक बार आपसे सुबह बात हो जाएगी, पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चों के प्रति जो आपका कंसर्न है, जो आपकी चिंता है, उसे मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी पेरेंट्स हूं और मेरा बेटा भी दिल्ली के श्रीराम कॉलेज में पढ़ रहा था, तो हम लोगों की भी उसी तरह की चिंताएं होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ मानकर चलना पड़ता है, क्योंकि जो 6 घंटे की क्लासेज होंगी उसमें स्टूडेंट्स का मोबाइल बिल्कुल बंद होगा। सुबह आपसे बात हो जाएगी, शाम को या रात में आपसे बात हो जाएगी, बहुत जरूरी हुआ तो लंच का जो टाइम होता है, लंच का टाइम जनरली 1 बजे से लेकर 2:15 बजे तक का होता है। अगर कोई बहुत जरूरी बात करनी है तो आप उस समय बात कर सकते हैं, और अगर जरूरी बात नहीं करनी है तो आप बात न करें। उसका कारण यह है कि जो लंच का टाइम है वो खाने का टाइम है, और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए हम वहां भी कुछ शिष्टाचार और कुछ डिसिप्लिन की बात बताएं। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि स्टूडेंट उस समय का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने में करे, ताकि उसकी जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग तरीके से विकसित हो सके, उसका संकोच टूट सके, और उससे भी बड़ी बात यह कि वह अपने को फैला सके। फैलाने का मतलब यह है मित्रों कि आप जिस भी छोटी जगहों से आ रहे होंगे, यहां आने के बाद आप हिंदुस्तान के हर जगह के स्टूडेंट्स से मिलेंगे, और अगर उसमें से कोई आपका मित्र हो जाता है, कोई आपका परिचित हो जाता है, तो आप उस छोटी सी जगह में रहते हुए भी उस बड़ी सी जगह तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जो टी ब्रेक होता है, जो लंच ब्रेक होता है, उस समय का भी अधिकतम इस्तेमाल स्टूडेंट्स करें। इसलिए पेरेंट्स, मेरा निवेदन है कि आप कम से कम फोन पर बात करने की कोशिश करें, और साथ ही आप देखें कि कोई ऐसी बात न हो कि स्टूडेंट्स को भावनात्मक चोट पहुंचे, उसमें उद्वेलन आए, वह अपने आप को अव्यवस्थित महसूस करे, यानी कि उसके अंदर की जो दृढ़ता है वो बनी रहे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो भी बातें उनसे करें उनको सपोर्ट करने वाली करें, ताकि उनमें मजबूती आए और पूरे कमिटमेंट के साथ वो यहां अपने समय को लगा सके। मित्रों, आप अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं जानता हूं कि आप ये सब जानते हैं, लेकिन मुझे अपने मन की बात शेयर करनी थी, क्योंकि एज ए पेरेंट्स मैं जानता हूं कि हम सब जानते हुए भी अपने बच्चों से कुछ इतना अतिरिक्त मोह रखते हैं, जो जायज भी है, कि हमसे इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, और टाइम बेटाइम जब भी हमारा मन करता है, लगता है कि एक बार अगर बच्चे की आवाज सुन लें तो काफी राहत मिल जाती है, काफी सुकून महसूस होता है। लेकिन आप मान करके चलिए कि बच्चे यहां हैं, वो सुबह शाम आपसे संपर्क में रहेंगे, व्यवस्थाएं की हुई हैं, जो छोटी बहुत अगर बड़ी होती भी हैं तो आपके बच्चे हैं, वो युवा हैं, उन सबकी व्यवस्था वो कर लेंगे, उनमें इतनी क्षमता है, आपने भी उन पर इतना विश्वास किया है, तभी आप उन्हें यहां भेज रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कि हम सब अपने अपने दायित्वों को हर संभव अधिकतम बिंदु तक निभाने की कोशिश करें, ताकि हम इससे अधिक से अधिक आउटपुट ले सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी पेरेंट्स के प्रति एक बार फिर से एकेडमी की ओर से, अपनी पत्नी की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारी कोशिश होगी कि एकेडमी के प्रति जो उनका विश्वास है, जब बच्चे यहां से जाकर आपसे बातें करेंगे या फोन पर भी जब यहां के बारे में आपको बताएंगे, तो आपका वह विश्वास और भी अधिक मजबूत होगा। और हमारे लिए इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है कि आप के बच्चे एक यज्ञ में लगे हुए हैं, एक बड़ा काम करना चाह रहे हैं, यजमान तो वही हैं, मूल आहुति आपके बच्चों को ही देनी है। आप और हमारा रोल केवल इतना ही है कि उसमें हम सब अपनी अपनी आहुतियां डालते रहें। तो पेरेंट्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हृदय से स्वागत। मित्रों, आज आप इसे ही मेरे लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा मान लें, क्योंकि ऑलरेडी 14:30 हो चुके हैं। लेकिन एक जो बड़ी टची बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और सच पूछे तो अभी मैं जितनी भी बातें की हैं वो एक तरीके से सबके सब इमोशनल लेवल की हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इमोशंस कोई थूथी चीज नहीं होती, कोई व्यर्थ की चीज नहीं होती, कोई कमजोर बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी चीज होती है। सच पूछे तो हमारे जीवन का जो रस है वो इमोशंस में ही होता है, जिसे हम एंजॉय करते हैं। और भरत मुनि ने इसी रस को ही सबसे बड़े जीवन का आधार माना है। मित्रों, कल आपने न्यूज में देखा होगा कि संजय दत्त जेल से रिहा हुए, राइट? दो बातों पर आप गौर कीजिए कि जेल से रिहा होते ही सबसे पहले उन्होंने धरती को चूमा और जिस जेल में वो बंद थे उसे सैल्यूट किया, वहां पर हमारा तिरंगा भी लहरा रहा था, उसे उन्होंने सैल्यूट किया। और दूसरा पॉइंट ये कि लौटने के जब बाहर जब वो निकले तो उन्होंने अपनी पत्नी को मान्यता को 440 रुपए दिए, लगभग उन्होंने 40,000 रुपए जेल में रहकर के कमाए थे और उसमें से 440 रुपए बचे हुए थे। ये दो घटनाएं हैं मित्रों। पहली घटना तो राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की घटना है, जो हमारी धरती मां है, जो हमारा राष्ट्र है, वही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं। अगर राष्ट्र नहीं है, जिनके पास राष्ट्र नहीं है, जो मारे मारे खाना बदोश जैसे घूम रहे हैं, जो शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं, उनसे जाकर के पूछिए तो उनकी सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है कि उन्हें उनका राष्ट्र मिल जाए। राष्ट्र है तो हम हैं, क्योंकि वही हमारी धरती है, उसी पर हम पैर रख करके बड़े हुए हैं और वो हमें गोद में लिए हुए हमारा पालन पोषण कर रही है। इसीलिए भारत ने जो अपनी धरती की कल्पना की है, आज से नहीं बल्कि आप वैदिक ग्रंथों को उठा करके कर देखिए तो वो मां की कल्पना है। तो निश्चित रूप से जब हम धरती को प्रणाम करते हैं तो अपनी मां को ही प्रणाम करते हैं। धरती को प्रणाम करने से कुछ नहीं होगा, न तो वहां की धरती कोई बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, न धरती को कोई इसकी अनुभूति होती है, लेकिन जो प्रणाम करता है क्या उसके साथ भी यही होता है? उसे उसकी अनुभूति होती है। धरती को प्रणाम करके वो अपने अंदर एक इमोशनल एनर्जी गेन करता है, नंबर एक। नंबर दो मित्रों, कि मान्यता को ले जाकर के उन्होंने 440 रुपए दिए, क्या इसका कोई यथार्थवादी अर्थ है? नॉट एट ऑल। उनकी पत्नी को 440 रुपए की जरूरत नहीं है, 440 रुपए से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह परिवार भारत का एक बहुत संपन्न, बहुत प्रतिष्ठित और बहुत धनी परिवार भी है। सुनील दत्त जी बहुत ही सम्मानित लोगों में है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छे फिल्म एक्टर थे, बल्कि वो बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान थे। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं सुनील दत्त जी से मिला हूं और मैंने उनसे बातचीत की है। क्या हैंडसम पर्सनालिटी, कितना लवली फेस, उनकी आवाज में, उनकी बातों में कितना बिल्कुल पितृतुल्य, आप समझ लीजिए कि उनकी वॉयस और सोसाइटी के प्रति उनका कंसर्न, इसने सुनील दत्त जी को एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाया है। उनका परिवार है, 440 रुपए का कुछ नहीं है, लेकिन संजय दत्त ने ऐसा क्यों किया? संजय दत्त ने इसलिए सिर्फ ऐसा किया क्योंकि 440 रुपए वो अपनी पत्नी को देकर के अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा को और अपने जीवन में उसके महत्व को रेखांकित करना चाहते थे और अपनी पत्नी को एहसास दिलाना चाहते थे, कुछ अतिरिक्त तरीके से बताना चाहते थे। सवाल यहां 440 रुपए का नहीं है, सवाल उस इमोशनल ब्रिज का है, उस भावनात्मक सेतु का है जो किन्हीं भी दो लोगों को जोड़ता है और इस कदर जोड़ देता है कि फिर हमेशा के लिए जोड़े रखता है मित्रों, और यही है इमोशनल एनर्जी। तो दोस्तों, अब इसके बाद आज मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर और वो है न्यूज की स्टेज। पहली बात तो यह फ्रेंड्स कि आप लोगों ने भी न्यूज सुनी है और कल के न्यूज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मैं विशेष रूप से चर्चा कर सकूं, क्योंकि आपने सुना कि कल की जो पूरी न्यूज थी, जो खबर थी, और स्वाभाविक रूप से वो रेल बजट से भरी हुई थी। देखिए, जहां तक सिविल सर्विस का सवाल है, और मैं समझता हूं कि जहां तक दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का भी सवाल है, अब वो जमाना बीत गया जब बजट से कुछ इस तरीके के स्ट्रेट क्वेश्चंस आते थे। पहले तो आते थे 80 के आसपास, अब वो नहीं आते हैं, और ज्यादा अच्छा हुआ कि नहीं आते, क्योंकि उन आंकड़ों से हमें क्या लेना देना। बजट से क्या आउटकम निकलता है उस पर यदि प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं, तो वही आपके काम के हैं और वही होना भी चाहिए। जहां तक इस बार के रेलवे बजट का सवाल है मित्रों, अगर इसका पूरा हम सिविल सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखें, तो एक ही प्रश्न मेरे दिमाग में आता है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो रेलवे बजट के बारे में जो प्रतिक्रियाएं आई, अलग अलग एक्सपर्ट्स के आए, पॉलिटिकल पार्टीज के आई, उसमें एक बात जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और वो ये कि रेलवे में इतने सब सुधार करने की बातें कही गई हैं लेकिन किराया नहीं बढ़ाया गया है। एक तरफ सुधार करने के लिए धन की जरूरत है, दूसरी ओर इसका किराया बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है, रेल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है, और तीसरी बात यह कि ये दोनों चीजें तब की गई हैं जबकि रेलवे नुकसान में है। तो सवाल यह है कि इसकी व्यवहारिकता क्या है, ये कैसे संभव हो सकेगा? आय बढ़ नहीं रही है, खर्च अधिक कर रहे हैं, यहां तक कि सैलरी में जो रेवल अभी से पे कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसकी उसी के हिसाब से 30-32 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा रेलवे को, रेलवे पहले से ही नुकसान में है, तो ये कैसे संभव होगा? दोस्तों यहां आपको थोड़ा सा जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो इस तरह के जो उद्यम हैं जो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा विचार करना पड़ेगा। आपने इससे ठीक पहले आपने देखा है कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो कितने ज्यादा नुकसान में हैं, उनका नॉन पेमेंट जो एसेट्स हैं वो कितना अधिक हो चुका है, और इस बार की तिमाही में तो लगभग अधिकांश पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने नुकसान दिए हैं, जिसको लेकर के सच पूछे सरकार भी चिंतित है, अर्थशास्त्री भी चिंतित है और पूरा देश चिंतित है। आपने इससे पहले आपने एयरलाइंस के बारे में पढ़ा कि कितना 70 हजार करोड़ का शायद नुकसान दिखाया था जिसमें 40 हजार करोड़ रुपए की सरकार ने भरपाई की, और आपने अगर चैनल्स देखा तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक एक्सपर्ट ने कही थी और उन्होंने कहा था कि मैं एग्जैक्ट जगह तो थोड़ा सा भूल रहा हूं, उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे अगर है तो, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि शायद लखनऊ से कानपुर तक का जो किराया है रेलवे में वो 20 रुपए का है और कितने सालों से वो 20 रुपए किराया चलता आ रहा है, जबकि जो सामान्य से सामान्य बस है उसमें भी वो किराया 60 रुपए है। अब सवाल यह कि वहां 60 रुपए है और यहां 20 रुपए है, तो एक तो रेलवे में भीड़ होगी ही होगी और दूसरा यह कि इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। इसका मतलब कुल मिलाकर के यह है मित्रों कि इस रेलवे बजट के आधार पर हमें थोड़ा सा जो विचार करना होगा सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं उनको किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए। नो डाउट कि पब्लिक सेक्टर की यूनिट कोई प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स नहीं है, लेकिन कम से कम लॉस मेकिंग यूनिट्स तो न बने, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो लॉसेज होते हैं वो अल्टीमेटली पब्लिक का ही लॉस है। हम कह सकते हैं कि हम 20 रुपए में पर्टिकुलर स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ये हमको बहुत सस्ते में अवेलेबल हो रहा है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते कि अल्टीमेटली ये जो लॉस हो रहा है या जो हमको सस्ते में यहां तो हमें मिल रहा है लेकिन इसकी भरपाई पब्लिक को किसी न किसी दूसरे रूप में करनी ही पड़ती है। अब ये बात अलग है कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वो उसकी भरपाई न करके और जो संपन्न वर्ग है वह उसकी भरपाई करता है, लेकिन यह भी तो है कि अगर वहां की थोड़ी सी भी भरपाई करने की स्थिति रुक जाए तो जो पैसा हमारा भरपाई करने में लग रहा है वही पैसा हमारा डेवलपमेंट में लग सकता है, और ये जो डेवलपमेंट होगा इसका फायदा उसी गरीब तबके को ही मिलेगा, उसको अच्छे हॉस्पिटल्स मिल सकते हैं, उसको अच्छे स्कूल्स मिल सकते हैं, उसको अच्छी सड़कें मिल सकती हैं और दूसरी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। तो मित्रों ले दे करके कुल होता यह है कि कहीं ना कहीं पब्लिक को ही उसका हर्जाना भरना पड़ता है। तो इस एंगल से जरा सा आप सोचेंगे मित्रों, और ये बात मैं खासकर इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इस बार 2015 के अगर आप जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर को देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत पेपर आया है, और मुझे सबसे ज्यादा देख के इस बात का संतोष होता है कि बहुत ही अप्लाइड फॉर्म के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही अप्लाइड फॉर्म्स के। अगर आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इसमें क्या है, ये तो मेरा सुना हुआ स्टार्टअप भी मैंने सुना है और डिजिटल इंडिया भी मैंने सुना है और स्मार्ट सिटी भी मैंने सुना है और उसके बारे में कुछ आप बोल भी सकते हैं, तो सब कुछ वो है। लेकिन जब आप उनकी थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि सिविल सर्विस की तैयारी सच में वहां जाकर के चैलेंजिंग होती है। आप ये मान करके चलिए कि जो जनरल स्टडीज का जो लेवल है वो 12th तक का है, जो सामान्य तौर पर सीधा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है 12th तक का, ये जनरल स्टडीज है। लेकिन आपको ये कतई नहीं भूलना चाहिए इसका जो उत्तर लिखने वाला जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट कर चुका है, ग्रेजुएशन कर चुका है, वो ग्रेजुएट है, तो सिलेबस तो वही है। हो सकता है कि प्रश्न भी वही हो, लेकिन उत्तर वही नहीं है, क्योंकि अब जो उत्तर लिखने वाला जो स्टूडेंट है वो ट्वेल्थ का पढ़ा हुआ स्टूडेंट नहीं है, वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ स्टूडेंट है। जब तक आप इस बारीकी को समझ करके उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को नहीं ढालेंगे, तब तक सही मायने में आप सिविल सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है मित्रों उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सच पूछे तो इसके सिवाय कल के न्यूज में और कुछ भी नहीं है। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर की कुछ क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मित्रों, इसमें एक जो क्लिपिंग्स है बहुत ही खूबसूरत क्लिपिंग्स है और मैं चाहूंगा कि ये क्लिपिंग्स आप सबके पास परमानेंट होनी चाहिए, ये आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए। हालांकि है ये एडिटोरियल कमेंट, थोड़ा सा अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमेंट कर लीजिए, एडिटोरियल की जगह पर है, एडिटोरियल कमेंट तो नहीं है, एक छोटा सा आर्टिकल फॉर्म है, ये छोटा सा है लेकिन अपने आप में कंप्लीट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पर है मित्रों। और ये टॉपिक है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पर, यानी कि सामाजिक उद्यमिता पर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये आर्टिकल लिखा गया है और अब जो सिविल सर्विस में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस की भूमिका लगातार बढ़ती चली जा रही है। मित्रों, जब आप इस आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तब ढेर सारे प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। उद्यमिता तो एक बात है, हम बिजनेस कर, हम व्यापार, हम उद्योग लगाते हैं तो उद्योग लगाने वाला उद्यमी हो गया, राइट? तो ये सामाजिक शब्द के जुड़ने से क्या हुआ? सामाजिक शब्द के जुड़ने से सीधे सीधे ये नहीं हुआ कि समाज के हित के लिए लगाया जाने वाला उद्योग, यहां थोड़ा सा आपको हटना तो सोचना पड़ेगा। ये उद्योग तो है, याद रखिए कि एक उद्योग है तो उद्योग में प्रॉफिटेबिलिटी तो होगी, मतलब अगर, क्योंकि अगर उद्योग में हानि होगी जैसा कि हमने अभी रेलवे के बारे में कहा तो उसकी भरपाई तो सरकार कर देगी, सरकारी बैंकों की भी भरपाई सरकार कर देगी जो लॉसेस है। लेकिन अगर प्राइवेट में अगर ऐसा हो रहा है तो प्राइवेट वाला इतने नुकसान से उस उद्यम को ज्यादा समय तक नहीं चला सकता, उसको उम्मीद रहेगी कि दो चार पांच साल चलाने के बाद प्रॉफिट आने लगेगा, तब तक तो चलाता रहेगा, लेकिन जिस दिन उसको पक्का भरोसा हो जाएगा कि यहां लॉस के सिवाय कुछ नहीं मिलना है वो उसे बंद कर देगा, और वो जायज भी है क्योंकि आखिर में उसके नुकसान को बर्दाश्त करने की एक सीमा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह उद्यम है और प्रॉफिट का भी उद्यम है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक विकास है या कह लीजिए कि समाज की सेवा भी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रॉफिट भी उसका है वो बहुत ही मार्जिनल है। इसको आप एक अलग तरीके से आप पब्लिक सेक्टर पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर के साथ प्रॉब्लम है वो ये उसके साथ दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम है, आप जानते हैं। तो मित्रों, सच पूछे तो ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें एक तरफ तो आप कह लीजिए कि एक सामाजिक प्रतिबद्धता है, सोशल कमिटमेंट है, और दूसरी तरफ इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास एक सेंस भी है, एक इंडस्ट्री का, एक बिजनेस का सेंस भी है। यानी कि जिसमें बिजनेस का सेंस है यदि वह सामाजिक सेवा, सामाजिक विकास के उद्देश्य से कोई उद्यम शुरू करता है तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे कि बिहार के पिछड़े इलाकों में बिजली नहीं पहुंच रही थी तो कुछ लोगों ने क्या किया कि वहां जो भूसा वगैरह होता है उनसे बिजली बना करके और पूरी की पूरी तरह से वहां बिजली पहुंचा दी। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक उदाहरण ये हो गया। मित्रों, अब इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं। पहली बात तो यह है कि आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एनजीओ कहते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। एनजीओ भी लगभग यही काम करें, आप देखिए कि एनजीओ हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के सेक्टर में काम कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्रों में जाकर के काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, हमारे जीवन के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं एनजीओ। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप उससे अलग कैसे हुआ? देखिए, एनजीओ के साथ और सोशल एंटरप्रेन्योर ये अंतर आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि सिविल सर्विस में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली बात तो यह कि जो एनजीओ होते हैं वो अपनी तरफ से अर्न कुछ नहीं करते, वो दूसरों के अनुदान पर डिपेंड करते हैं, फिर चाहे उनको वो पैसा गवर्नमेंट दे या उनको पैसा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दें, चाहे वो बिल गेट्स दें जैसे वो एड्स पर बहुत पैसा दे रहे हैं, या किसी कोई यूनिसेफ जैसी संस्था दे, वहां से वो पैसा लेते हैं और फिर उस पैसे का उपयोग वो सामाजिक विकास के लिए करते हैं। तो ये दूसरों पर निर्भर है आर्थिक रूप से, लेकिन जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है वो दूसरों पर निर्भर नहीं है, वो अपने से ही वो रिसोर्स जनरेट करते हैं और फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं। इनकी लाइफ लंबी होती है, काफी लंबी होती है, क्योंकि ये अपने आप में स्वावलंबी हैं। इनको दूसरे का मुंह नहीं देखना है, तो इनकी पॉलिसीज, इनके इंप्लीमेंटेशन जो कुछ भी होंगे उन पर उनका ही नियंत्रण होगा, दूसरा नहीं कह सकता कि आप इस तरह से पैसा खर्च कीजिए। दूसरी बात जो है मित्रों, मैं समझता हूं कि वो कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो ये है कि एनजीओ फ्री में सब देते रहेंगे, जो कुछ भी लेना है फ्री में लो, फ्री में लो, फ्री में लो, लेकिन ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है ये फ्री में नहीं देंगे, ये आपसे भी उसके बदले में कुछ लेंगे जो इतना रीजनेबल होगा कि वो नहीं के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने बिजली बनाने का उदाहरण दिया, वो भूसे से बिजली बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बिजली फ्री अवेलेबल करा रहे हैं, वो इस तरीके से अवेलेबल कराएंगे कि वो बिजली बनाने का खर्च निकल जाए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बन जाए, समाज का भी काम चलता रहे और जो उद्यमी जिसने इसमें पूंजी लगाई है वह भी इस काम को लगातार चलाता रहे और उसका भी गुजारा होता रहे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मित्रों कि ये जो सामाजिक उद्यमिता है, ये जो गांधी जी की जो ट्रस्टशिप की जो पॉलिसी थी, जो उन्होंने ट्रस्टशिप का जो सिद्धांत दिया था कि जो हमारे उद्योगपति हैं वो अपने को उद्योगों का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी समझे, तो उसके साथ किस तरीके से मैच करता है या उससे कैसे अलग है, इस पर आप थोड़ा सा विचार करेंगे। इन दोनों में काफी समानता है, इन दोनों में काफी समानता है, जो गांधी जी के ट्रस्टशिप और जो सामाजिक उद्यमिता की बात की जा रही है। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन है मित्रों कि एक सोशल कॉरपोरेट रिस्पांसिबिलिटी है, आपने सुना है कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जिसे हम CSR कहते हैं। तो ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, उसमें कोई भी एक बहुत बड़ा उद्योग है उसको अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत सामाजिक कामों के लिए देना पड़ता है, और वो कौन कौन से सामाजिक काम होंगे उनकी पूरी लिस्ट होती है, तो ऐसा वो लोग भी करते हैं जो बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो और ये अलग कैसे है, आपको इस पर भी विचार करना पड़ेगा। मैं आपको केवल क्लू दे दे रहा हूं कि देखिए वो काम तो कुछ कर रहे हैं और उस हिस्से का कुछ पैसा लगा करके वो एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं, वो बेसिकली उन्होंने अपना एनजीओ बना लिया है और उसका फंड एनजीओ के रूप में यहां दे देते हैं और फिर वो लगाता है। लेकिन जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है वो वहीं जाकर के और उन्हीं के बीच रह करके उनके लिए काम कर रहे हैं और आर्थिक रूप से काम कर रहे हैं, तो उनको वो आर्थिक रूप से मदद, उनको आर्थिक रूप से संबल बना रहे हैं वो। जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग को ले लीजिए, माइक्रो फाइनेंसिंग आजकल बहुत चल रहा है कि जो बहुत सस्ते कीमत पर बहुत आसान तरीके से गरीबों को ऋण उपलब्ध कराना और उस ऋण को लेकर के वो अपने आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं, आजीविका का उनको एक स्थायी जरिया मिल रहा है। और माइक्रो फाइनेंसिंग के जो संगठन है पूरी की पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ फैलते चले जा रहे हैं। नो डाउट मित्रों कि भारत जैसे देश के लिए इसकी बहुत जरूरत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस क्लिपिंग्स है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये क्लिपिंग आप सबके साथ, सबके पास रिकॉर्ड में होनी चाहिए। तो मित्र न्यूज़पेपर्स के दूसरी और क्लिपिंग्स हैं, इसमें एक क्लिपिंग्स मैं आपको जनसत्ता की प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें खासकर एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है, जो संस्था है मानव अधिकारों के बारे में, उसने कहा कि भारत में असहिष्णुता बहुत बढ़ रही है, उसमें और कुछ कुछ बात दिए हुए हैं। मित्रों मैं यहां केवल ये कहना चाहूंगा कि जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो आप पूरी तरह से उस रिपोर्ट को ही आधार मत बना लीजिए अपने विचारों का, कोई भी हो, चाहे फेवर में हो अगेंस्ट हो, उसको केवल आप समीक्षा के रूप में इस्तेमाल कीजिए कि भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये व्यू है, फिर आप उस व्यू की भी समीक्षा कीजिए, क्योंकि चाहे कोई कितनी भी इंटरनेशनल, कोई कितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। तो इस तरह की जो चीजें आती हैं, कहीं आप स्टडीज पढ़ते हैं, कहीं आप इस तरह के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, डेटा पढ़ते हैं, तो उनको आप अपने समीक्षा का आधार बनाइए, अपने कंक्लूजन का आधार बनाने से बचिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा मित्रों, अब चूंकि ये मेरा अंतिम ऑडियो है कुछ दिनों के लिए, कि अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों के पास होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें कुछ पर तो क्वेश्चंस भी सीधे सीधे आ जाते हैं, तो उसकी कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए और जब बजट आएगा उस पर आप निगाह रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद मित्रों फिर हम लोगों की 14 तारीख को तो मुलाकात होगी ही। अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। मित्रों सबसे पहली बात तो ये कि सच में आप सब कुछ जो मेल लिखते हैं और उस मेल में अपने आप लोगों के जीवन में इस ऑडियो से या क्लासेस में आने से क्या परिवर्तन हुए जब आप ये बातें लिखते हैं, तो वस्तुतः सच पूछे ईमानदारी के साथ तो मेरे आंखों में आंसू हो जाते आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि इस आंसुओं के रूप में आप सब मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, दो मेल हैं शादाब कुरैशी के और कैप्टन राहुल रे के, जो MIT USA से हैं। अभी जो हमारा फोर्थ बैच शुरू हो रहा है उसके लिए भी और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बधाई दी है। मित्रों, कई स्टूडेंट्स ने बधाई दी है कि फोर्थ बैच शुरू हो रहा है, तो इसके लिए मैं उन सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे यह पढ़ करके लगता है कि किस तरीके से यहां के हमारे गए हुए स्टूडेंट अभी तक अपने आप को इस एकेडमी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ताकत भी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शादाब कुरैशी, आपने जो मेल लिखा है उसमें आपने दो सुझाव दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों सुझाव पहले से ही इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं, क्योंकि वो जानकारी हम लोगों की थी लेकिन उस समय हम लोग मजबूर थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। हालांकि सुधारने की कोशिश की गई थी लेकिन हमने अब उस सिस्टम को ही बिल्कुल बदल दिया है। आपने उधर हम लोगों का ध्यान दिलाया, इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। मित्रों, बहुत से मेल हैं, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, बिलाल मलिक जो दिल्ली से हैं, रंजन कुमार राज गया बिहार से हैं, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, हर्षवर्धन, अभिनव यादव जो बाराबंकी से हैं, अभिषेक कुमार, रमाकांत शाह सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं, अमन तिवारी जयपुर से, शादाब कुरैशी दिल्ली से, हंसराज तेली बूंदी राजस्थान से, प्रिया पवार चंडीगढ़ से, मृत्युंजय पांडे गोरखपुर से, तेरेसा अलेक्जेंडर, विक्रम जाखड़ श्रीगंगानगर राजस्थान से, और कैप्टन राहुल रे MIT अमेरिका से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इसमें जो मैंने जो बेस्ट मेल जो चुने हैं वो तीन मेल हैं, और वो है एक बिलाल मलिक का, और एक है शादाब कुरैशी का, और एक है कैप्टन राहुल रे का। तीनों के मेल में से कौन किससे मैं बेस्ट घोषित करूं, निर्णय लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, तो मैंने तीनों को ही बेस्ट के लिए चुना है। तो बिलाल, शादाब और कैप्टन राहुल रे, आप तीनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैप्टन राहुल रे को इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने लिखा है कि उनके एक प्रेजेंटेशन को इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट घोषित किया गया है, और उसका श्रेय वो एकेडमी को और साथ ही अपने बैच के सभी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो इसके माध्यम से मैं राहुल रे, आपकी जो बेस्ट जो आपकी जो आपका जो आभार है, ग्रेटिट्यूड है, वो आपके सभी बैचमेट्स तक पहुंचा रहा हूं, और निश्चित रूप से इस आभार व्यक्त करने के लिए एकेडमी की ओर से और आपके सभी बैचमेट्स की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यही वह इमोशनल एनर्जी है जो हम लोगों को एक दूसरे से जोड़े रहती है। और जब हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो एक दूसरे की ऊर्जाएं एक दूसरे तक पहुंच करके हमें और भी अधिक शक्तिशाली और मजबूत बनाती रहती हैं। तो मित्रों, अब इन्हीं शब्दों के साथ अब बड़े भरे मन से, बड़े भरे हुए मन से, बड़े उदास मन से और भरे हुए गले से भी एक लंबे वक्त के लिए 13 मार्च तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं, इस वायदे के साथ कि 14 मार्च को फिर मैं आप सबकी सेवा में हाजिर होऊंगा और फिर हम आगे खूब सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। मेरा बहुत बहुत प्यार भरा अभिवादन एक बार फिर से स्वीकार करें, अपनी स्मृति में बनाए रखें, और फिर कुछ दिनों के बाद मुलाकात होगी। आप सभी को मेरा एक बार फिर से अभिवादन। नमस्कार।